हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलामु अलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया ज़ेब्रान झा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 08007778 9 पर। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं facebook.com/chartbustersvoa। और आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले मैं उनकी फिल्म के एक गीत की झलक आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद मैं आपका तारुफ उनसे करवाऊंगी।
धड़क धड़क के कहता है दिल, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। धड़क धड़क के कहता है दिल, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। और आपको बताती चलूं कि हमें ज्वाइन किया है मारूफ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर फहीम बर्नी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी बर्नी साहब, आप अभी शूट पर थे तो हमें कुछ बताइए किस प्रोजेक्ट पे काम। जी जी बिल्कुल आ रही है, तो हमें बताइए किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है।
एक्चुअली अभी एक प्रोजेक्ट है किस्मत ड्रामा सीरियल, करंटली ऑन एयर है वो हम टीवी पे, और उसी की शूट चल रही थी। और हम श्योर के वहाँ पे भी आ रहा होगा, हम टीवी के प्रोजेक्ट में किस्मत के नाम से एक सीरियल है, उसकी शूटिंग चल रही थी। कुछ
जी चार, मेरा ख्याल है शायद चार किस्तें उसकी ऑन एयर आ चुकी हैं, तीन या चार। जी जी
वेरी नाइस, आपको तो बहुत अच्छा मालूम है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनकी तीसरी किस्त अब फोर्थ है, सैटरडे को फोर्थ जा रही है।
जी जी जी, तो कैसा रिस्पांस, कैसा मिल रहा है आपको?
माशाल्लाह से आप देखिए कि यूट्यूब पे जब उसके चलने के फौरन ही ऑनलाइन के बाद इतने सारे व्यूज, और आजकल ट्रेंडिंग पे भी है, और माशाल्लाह से रेटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है पाकिस्तान में भी, उसकी चैनल पे हम टीवी बहुत खाती है। बिकॉज ये उनका पांच प्रोजेक्ट में से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, और माशाल्लाह से सो गुड। आई डोंट नो, आप ये तो आप लोग बताएंगे, हम लोग तो चीज बनाते हैं, बट अमेरिका में सुन रहे हैं या जो लोग देखते हैं पाकिस्तानी टेलीविजन और पाकिस्तानी हम टीवी के गाने जैसियों के या उसके दूसरे चैनल के, तो उनको पता होगा कि कौन सा कैसा ड्रामा है। बट मुझे खुशी होती है कि लास्ट टाइम जब मैं न्यूयॉर्क आया था
जी,
और मैं एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, हम लोग शूटिंग के दौरान थे, तो वहाँ पे गेट टुगेदर में जब मैं लोगों से मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक्टर्स के साथ साथ लोग मुझे भी जानते हैं, मेरे नाम को पहचान रहे थे और सबने मुझे, मेरे भी बहुत बुरे बुरे कॉमेंट्स थे उनके नाम लिए, नॉट सरप्राइज हुआ कि आपने अच्छे वाले मेरे के बुरे बुरे नाम याद क्यों करते हैं आप लोग। तो जितनी खवातीन भी कहनी नहीं, हमें उसकी स्टोरी बीच में वो वहाँ से आगे उसकी कहानी क्या होती है तो मैं तो भूल भी चुका हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे जितने भी आपके जो अमेरिका में व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देखते हैं पाकिस्तानी टेलीविजन को, और अब तो माशाल्लाह से हमारे एक्टर्स डायरेक्टर्स बहुत इंटरनेशनली बहुत वो हो गए। अभी जैसे हम लोग आ रहे हैं सिस्को ह्यूस्टन, हम भी अवार्ड के लिए
जी मुलाकात होगी आपसे,
वहाँ पे सारे सब लोग होंगे और आप लोगों को भी मौका मिलेगा, सब लोग बिल्कुल मुलाकात होगी, अगर आप चाहेंगी मिलना तो बिल्कुल होगी। और हम नहीं क्या बल्कि बहुत सारे लोग और भी होंगे जो चाहेंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका बने, उनकी आवाज भी यहाँ तक आए आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू।
जी तो वहीं पर नहीं साहब, जी जी कहिए
जो, हेलो जी जी सॉरी
जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है,
हाँ जी आप कुछ कह रही थी।
जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फिल्म और ड्रामा दोनों में से किसे डायरेक्ट करने में आपको मजा आता है, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा आपको पसंद है?
देखिए जब से मैंने काम शुरू किया मुझे तो फिल्म है, मैं हूँ, जब मैंने पढ़ा अपना फिल्म मेकिंग में और जो मैंने अपना, मेरा शौक ही था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पाकिस्तान में फिल्म का मैार और फिल्म का काम करना बहुत रीजनल मूवीज बनती थी जिसमें आप उस वक्त नहीं था, लेकिन उस वक्त भी मैंने एक अपनी फिल्म बनाई प्यार ही प्यार में, जिसमें जिसका गाना आपने
जी जी प्यार ही प्यार
मेरी फिल्म थी और उस जमाने में 2005 जी प्यार ही प्यार में, तो उसमें ये 2006 की फिल्म है जिसमें 2005 की सॉरी, और उस वक्त ये फिल्म बनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म आज बनी होती तो और ज्यादा हिट होती है, जिस तरह के गाने उस वक्त उसके बहुत वो हुए थे। तो फिल्म एंड टीवी मीडियम आर टोटली डिफरेंट मीडियम, टीवी मीडियम इज अ राइटर मीडियम एंड फिल्म मीडियम इज अ डायरेक्टर मीडियम। सो जहाँ पे डायरेक्टरशिप आती है, जब तक जहाँ पे डायरेक्शन का सिलसिला होता है तो डायरेक्टर को हमेशा, तो मेरा शुरू से ये था कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग, आई वांट टू डायरेक्ट बाय माय सेल्फ, आई वांट टू क्रिएट समथिंग एंड डायरेक्ट बाय माय सेल्फ। सो ये फिल्म में आप कर सकते हो, फिल्म में आपकी अपनी थॉट होती है, अपना विजन होता है, अपना अपना एक सोच होती है जिसको आप जैसे कहते हैं एक खाली खाके में कलर भरते हैं। ड्रामा इज आई कैन से कि जितना भी अच्छा ड्रामा हो जाए, मुझे उससे लगता है कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो शायद लिखा ही इतना अच्छा गया है और उसको हम एज इट इज उसको जो लिखा हुआ होता है उसको हम चाहते हैं, तो चाहे फिल्म हो या टीवी स्क्रिप्ट इज द कॉन्टेंट, बट एज अ डायरेक्टर आई लाइक टू डायरेक्ट द फिल्म, ऑब्वियसली बिग सिनेमा, मुझे सिनेमा का काम पसंद है और टीवी तो ऑब्जर्वेशन, टीवी पे तो नाम मिला है और टीवी पे तो पहचान मिली है, तो टीवी भी एक स्टार्टिंग का एक सिलसिला, लेकिन मुझे फिल्म करने का, फिल्म का करने का बहुत पैशन और शौक है, चूंकि अब मैं इंशाल्लाह ताला ने चाह तो इसी नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा काम फिल्म का भी।
मैं एग्जैक्टली यही बात आपसे करना चाह रही थी कि अब चूंकि बहुत नए नए डायरेक्टर्स आए हैं उस तरफ, यंग हमारे एक लॉट आई है, उन्होंने बड़े मुख्तलिफ मौजूआत पर फिल्में बनाई हैं जो बाहर के मुल्कों में भी बहुत पसंद की गई हैं, तो अब तो वक्त है कि आप भी आएं और अपना जो स्क्रिप्ट या जो टॉपिक जो थीम आपको पसंद है आप उस पर काम करें।
बिल्कुल, इट्स अबाउट टाइम कि आप जितने भी मेरे ख्याल में नए लोगों को अपने 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 विजन के साथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए, इट्स अबाउट टाइम कि आप किसी को जरूरत नहीं किसी पर डिपेंडेंट होने की कि फिल्म बनाने के लिए कोई, आप इफ यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट, आपके पास अच्छा सोच है, आपके पास अच्छा ख्याल है, कॉन्सेप्ट है, तो आप यू कैन मेक अ मूवी ऑन अ स्मॉल कैमरा, यू डोंट नीड टू, यू डोंट हैव टू हायर ह्यूज इक्विपमेंट। जितने भी हमारे जो ब्रॉड फिल्में हुई हैं जो कि जैसे लाल कबूतर है जो कि बड़ी खुशी की बात है कंसिडर की जा रही है उसको ऑस्कर के लिए,
जी जी बिल्कुल,
ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप इस किस्म की फिल्मों को देखा जा रहा है और सब बनाने वाले नए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ आर्ट भी हमारे पाकिस्तान में भरा हुआ है और पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि इस पर काम करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में टाइम दूर नहीं है, वक्त दूर नहीं है कि हमारी भी फिल्म जो है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ चलेंगी और पसंद की जाएंगी, जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों को आज पसंद किया जाता है हॉलीवुड की फिल्मों को, तो पाकिस्तान की फिल्म को लिए देखा जा रहा है। और दो हमारा हमारा बहुत अभी हम एक कहते हैं कि हम न्यू बॉर्न हैं, न्यू बॉर्न है फिल्म के हवाले से नई में शुरू हुई बात हुई है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हम कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे यंग टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो काम करें इंटरनेशनली, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और होपफुली जल्दी आपको पाकिस्तान के रिवाइवल सिनेमा नजर आना शुरू हो जाएगा, जो कि नजर आ रहा है।
आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और एक नाजर के तौर पे सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जब भी पाकिस्तानी फिल्में आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिनेमा में जाके देखें, एक फील जो हमेशा आती है, मैं अपनी ज़ाती राय आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो लगता है कि एक बड़ी स्क्रीन पर एक ड्रामा ही चल रहा है, यानी वो उस फिल्म का एक तासुर नहीं देती, उसकी क्या वजह है?
देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो 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 फिल्म करना चाहते थे उनको ड्रामा करना पड़ा।
सही।
और जो ड्रामा करना करते हैं उनको फिल्म करनी पड़ गई। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका फिल्मी विजन है वो चंद लोग हैं हमारे यहाँ, और अनफॉर्चुनेटली उनको भी आहिस्ता आहिस्ता चांस मिल रहा है, जैसे कि मेरे कलीग हैं नवीन बेग,
जी जी,
वो मुझे लगता है उनका विजन फिल्मी है, और एक डायरेक्टर है जो बाकी ज्यादातर लोग जो टेलीविजन से आए हैं, जो कि मैं अपने आप को टेलीविजन का हिस्सा जरूर कहूंगा, बट मेरा शुरू से शौक भी था फिल्म का था, क्योंकि मेरे हर ड्रामे में अक्सर लोगों को ये होता है कि आपका ड्रामा बहुत फिल्मी होता है और आपका जो ड्रामे में कुछ ना कुछ फिल्मी अंदाज होता है, ये होता है, तो ये मेरा शुरू से मेरा वो रहा है कि मेरी पहचान, मैं कहता हूँ मैं तो यही हूँ, और ड्रामे में भी मैं कहीं ना कहीं फिल्म ढूंढने लगता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग एक्शन फिल्मी बैकग्राउंड से, और जो हम भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं, बट हमारा शौक था जो हमने फिल्म बना के अपना लिया, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इतना वो नहीं था कि फौरन दूसरी फिल्म शुरू कर दे, लेकिन उस गैप के साथ बहुत कुछ सीखा उस फिल्म बनाने के साथ, अपना ही पैसा लगा के उस सजन पे, फिल्म जो है टीवी मीडियम से टोटली डिफरेंट है। पहले लेकिन आप जितना आप फिल्म में तो आप जितना भी बड़ा सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं, टेलीविजन का आपके एक महदूद हुआ है, तो कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने टीवी के डायरेक्टर्स ने फिल्म बनाई तो उसमें झलक ड्रामे की और उसका स्क्रीन प्ले या उनकी जो टेकिंग है वो ड्रामे की तरह नहीं।
आपकी आवाज कुछ खराब आ रही है फहीम बरनी सर, आपकी आवाज काफी खराब आ रही है, तो हम आपको दोबारा कॉल करें?
जी मेरी आवाज कर लीजिए अगर आप लाइव।
जी जी लाइव है और आवाज कुछ खराब है। जी 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 बिल्कुल। तो इस दौरान हम एक गाना प्ले करते हैं और हम आपको दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं। जी जी अभी
सोने हाय भी मन मोने
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और हम बातचीत कर रहे हैं फहीम बर्नी साहब से। और मैं अपने सुनने वालों को कह दूं कि आप परेशान नहीं हो, क्योंकि फहीम बर्नी साहब, जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया, वो अपने ड्रामे की शूटिंग कर रहे हैं और उन्होंने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला है। तो जैसे ही हम अपनी बातचीत उनके साथ मुकम्मल करेंगे, हम आपकी कॉल ज़रूर लेंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखिए और नाराज़ मत होइएगा। जी बर्नी साहब, अब ज़रा बोलिए, मैं देखूँ कि आपकी आवाज़ अब हम तक कैसे पहुँच रही है। हेलो
जी, देखिए जी, हेलो,
बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छी। अच्छा, तो मुझे फहीम साहब आप खुद बताइए कि आपकी अपनी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है। यकीनन आप जाहिर है फिल्में तो शौक से देखते होंगे।
जी जी बिल्कुल, मैं शौक से देखता हूँ और मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म में से एक फिल्म है अर्थ फिल्म, महेश भट्ट साहब की, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। इजाजत फिल्म मुझे गुलजार साहब की बहुत पसंद, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और मैं चाहता हूँ कुछ इस किस्म का काम शुरू हो तो मजा आए। और वैसे भी जो उस जमाने में पाकिस्तान में जब हम देखा करते थे फिल्म, तो एक फिल्म थी जीवा, पाकिस्तानी फिल्म,
जी
बहुत मजेदार लगी थी। और हमारे हमने वो जावेशिक साहब की
गाने बड़े अच्छे थे उसके।
जी गाने बहुत अच्छे थे उसके और उसमें निर्देशन भी रही थी। तो शायद उस वक्त दिल से फिल्म के डायरेक्टर भी काम करते थे और करते तो अभी भी हैं, लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा सा हम लोग आज जमाने के साथ नहीं चले। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो सैयद नूर साहब हों या हसीना मोइन साहिबा हों, सब अभी मौजूद हैं। वो चाहे तो वो बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने उस एरा में फंस गए। हमें आज के व्यूअर को, आज की यूथ को इन्वॉल्व करना है अपने सब्जेक्ट्स में और आज ही बात करनी है और उन्हीं सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो रिलेटेबल हैं। हम पहुंच सकते हैं पुरानी तरीके से कि जो ठीक है, हमारे ट्रेडिशन, हमारे जो पदार्थ है वो उसी तरह ही है कि माँ बाप की इज्जत करना, लेकिन इसके अलावा भी जो आजकल हमारी यूथ का जनरेशन गैप है और उसमें जो चीजें हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनके साथ किस तरह हैंडल किया जा सकता है, इवन इन पाकिस्तान और अब्रॉड, दोनों जगह में एक ही सिलसिला है कि बच्चों की सही तरबियत कैसे हो, सही तरबियत हो जाए तो उसको उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि ये बच्चे सही रहें। तो मेरे ख्याल में इन इन मौजूदात के प्रोजेक्ट्स बने, इवन चाहे फिल्म, जैसे मैं अपनी लव लंदन चालकोट फिल्म का नाम है
जी।
जो कि मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूंगा, तो ईद पे इंशाल्लाह अगर हुआ सिलसिला तो ईद पर रिलीज होगी। तो उसमें यूथ भी इन्वॉल्व है, उसमें पंजाबी कल्चर भी है, उसमें उर्दू कल्चर भी है और सबको आज के मसाइल जो क्या क्या पाकिस्तान के एक गाँव में मसाइल हैं अभी तक और ब्रॉड यूके में रहते हुए वहाँ के अर्बन जो लोग हैं वो किन इन मसाइल के बारे में सोच भी नहीं सकते, जो हमारे पैटी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, और वो किस तरह जब वो एक लार्ज जब वो पहुंचेंगे उस वेडिंग पे, ग्रेट जो वेडिंग हो रही है, तो सारी चीजें एक आपस का होगा। लेकिन उसके बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद, पाकिस्तान में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कितनी वो बाद में रिवील होगा उन लोगों पे जो बाहर से आए हैं, जो पाकिस्तान को समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में कुछ नहीं है सिवाय टेररिज्म के, तो जो कि गलत है।
फहीम बर्नी साहब, अभी ये जो हाल ही में, अगर पिछले चंद सालों की आप बात करें, जब फिल्में दोबारा से उन पे एक आया है, अच्छा वक्त आया है जो बनी है, आपको इन तमाम फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी है? आप समझते हैं कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और लोगों को इस तरफ आना चाहिए जो पाकिस्तान में बनी है हाल ही में?
देखिए, पाकिस्तान में कमर्शियल डायरेक्टर, आई ऑलवेज लाइक कमर्शियल मूवीज, ऑल्दो मैंने जिन फिल्मों का नाम लिया वो आर्ट मूवीज हैं। हमारे यहाँ रिवाइवल के लिए अगर हम इजाजत या अर्थ या इस किस्म की बहुत सारी बरेली की बर्फी, चीजें बेस्ट मूवीज हैं उसमें, जो जिसमें मैं क्रॉस द बॉर्डर मूवीज का बता रहा हूँ कि जो जो कि बहुत अच्छी मूवीज गई हैं, बधाई हो टाइप मूवीज। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिनेमा का व्यूवर है वो एंटरटेन होना चाहता है। हम अभी सीरियस सब्जेक्ट पे फिल्म को बनाने का मतलब है बहुत बड़ी हिमाकत है, क्योंकि हम अभी हमारा रिवाइवल चल रहा है, हम सीख रहे हैं फिल्म में बना बना के। तो द बेस्ट पार्ट इज कॉमेडी फिल्म। कॉमेडी जॉनर जो है वो आपको हमेशा वो रहता है कि आप तो कॉमेडी लोगों का एंटरटेन करने के लिए, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं कि उर्दू और पंजाबी को मिक्स करके बोला जाए, जब दो कल्चर के साथ होते हैं, क्रॉस कल्चर ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम होते हैं वो दिखाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कॉमेडी फिल्म जो है जितनी भी बनती है वो अच्छी जाती है। ऑल्दो सीरियस सब्जेक्ट पे बनने वाली फिल्में वो क्रिटिक्स में तो बहुत होती हैं, लेकिन आम उसकी उसको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। मुझे एज ए डायरेक्टर मदीन बेग की जवानी फिल्म यानी फर्स्ट वाली बहुत मजेदार लगी, जो कि एंटरटेनिंग थी और मतलब कोई स्टोरी करनी पता था, लेकिन एवरीबडी वाज लाफिंग व्हाइल वाचिंग इट इन द सिनेमा, और सब हंसते थे और हंसते हंसते जाते थे, हंसते हंसते वापस आते थे, क्योंकि सब लोगों को इस ऐसे माहौल में आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आपने ड्रामा ही अगर आपने फिल्म को सीरियस को देखना तो फिर आप ड्रामा देखें पाकिस्तानी, वो सबसे बेस्ट है। बेहतर यह है कि हम कॉमेडी जॉनरा की मूवीज बनाएं, लोगों को अपनी तरफ बुलाएं, सिनी गोअर्स को, और माशाल्लाह से अब सिनी गोअर्स मिल गए हैं पाकिस्तान को, सिनेमा को लोग आ गए हैं जो सिनेमा में बैठ के फिल्में देखना चाहते हैं इन्हीं फिल्मों की बदौलत।
लेकिन आपने चूंकि बात की है अर्थ और पाकिस्तान में इजाजत और अर्थ की बात की है,
पाकिस्तान में इंडियन फिल्म नहीं लग रहे
जी जी,
नहीं भी लगे तो पाकिस्तान में अपनी फिल्में बनाई जा रही हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अब किसी गैर मुल्की फिल्म की जरूरत नहीं है। और हाँ ठीक है, हॉलीवुड की मूवीज आती हैं देखी जाती हैं, वो सर्टन एक मार्केट है उसकी, पर हमारे यहाँ अब अपनी फिल्म बन रही है तो और इसका नाम बनती रहेंगी तो हमें जरूरत नहीं है कहीं से फिल्म को इम्पोर्ट करने की।
तो फहीम बरनी साहब, आपने कॉमेडी फिल्म कही है तो संजीदा से ज्यादा कॉमेडी फिल्म बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि बड़ा बारीक सा फर्क होता है एक मजाह में और अब दूसरा क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, तो लोग अक्सर उस बैलेंस को कायम नहीं रख पाते, तो मेरे ख्याल में तो कॉमेडी फिल्म बनाना ज्यादा मुश्किल है।
बिल्कुल सही कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आप बहुत सही बात कर रही हैं कि कॉमेडी फिल्म बनाना ज्यादा मुश्किल है एक सीरियस उससे, बिकॉज सीरियस में अभी चूंकि फिल्म का देखें हम लोग ड्रामे के आदि हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बने और एक तसलसल एक एपिसोडिक कहानी के हम आदत है, हमें वन टाइम फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड उसको फाइनल उस पर लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमारी नरेशन जो है वो एपिसोडिक ली जाती है, तो हमें सीरियस सब्जेक्ट को एक घंटे डेढ़ घंटे या दो घंटे बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे आप कह रही हैं कि कहानी को संभालना मुश्किल हो जाता है और वो फिल्म नहीं चलती। तो कॉमेडी में ऐसा है कि नो डाउट कि आपको अगर आपके पास इंटेलिजेंस है या डायरेक्टर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है या आपको पता है कि आजकल का कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इन दोनों आईवी मूवीज में मुझे एक्टर इन द बेस्ट मूवी लगी कॉमेडी, उसकी कटिंग उसका स्टेकिंग बिल्कुल सिनेमा की तरह थी और वो लग रहा था कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो नदीम के बाद जो मुझे दूसरी फिल्म लगी है वो एक्टर इन लॉ लगी, तो ऑल्दो वो मुश्किल है लेकिन सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग था
बहुत
और कितना
exactly.
अच्छा सब्जेक्ट था जी। और उसके बाद पड़ोसी मुल्क में भी वही उसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनी, इसी तरह की मजेदार थी, लेकिन मकसद कहने का ये है कि हमें जो कॉमेडी है वो चाहे आप उसको, क्योंकि कहानी से ज्यादा सिचुएशन होती है आपके पास, और हमारे पास माशाल्लाह से पंजाब के पास पंजाब की एक स्ट्रेंथ रही है कि हमारा थिएटर पंजाब का कॉमेडी बहुत शुरू से अच्छा रहा है, जिसको इंडिया तक में भी देखा जाता था कॉमेडी को, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ है जिसकी बदौलत हम अच्छी कॉमेडी अगर हम सुलझा के और आज के हिसाब से बनाए तो आम सिचुएशन को कॉमेडी सिचुएशन में ढाल के हम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ऑल्दो मुश्किल तो है बट वो इजीली लोग एंटरटेन हो जाते हैं तो ज्यादा उस कहानी में नहीं जाते हैं। और अगर सीरियस को देखते हैं फिल्म को तो उसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं लूप होल रह जाता है उसकी, जब आप उसको वाइंड अप के दौरान या उसके क्लाइमेक्स के दौरान, शायद ये वजह है।
बहुत शुक्रिया फहीम बरनी साहब, हमने वादे से ज्यादा टाइम ले लिया है आपका, तो बेहद शुक्रिया आप अपने थैंक यू सो मच।
आपके आपके व्यूअर्स के साथ हूँ, कोई गाड़ी में होगा इस वक्त, कोई घर में होगा, जो भी सुन रहा होगा, मेरी तरफ से सबको आज जुमे का दिन है हमारा, जुमा मुबारक, आपके यहाँ जुमे का दिन शुरू हुआ होगा शायद, तो मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक और अल्लाह मियां हम सबको जहाँ भी जितने भी लोग हैं सबको महफूज रखे और खुश रखे।
आमीन, थैंक यू सो मच और गुड लक, और होती है आपसे मुलाकात ह्यूस्टन में, थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
इंशाल्लाह,
और खुदा हाफिज,
इंशाल्लाह,
अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया जिब्रान झा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और हमें कॉल की है अल्लादेता शाकिर साहब ने विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम अल्लादेता साहब।
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, इंटरनेशनल फोरम की जानिब से आपको वेलकम करते हैं।
बहुत शुक्रिया
कहते हैं आपको प्रोग्राम में, तो बड़ा मजा आ रहा था आपकी मेहमान की गुफ्तगू भी सुनी। मैं रस्ते में था तो मैंने कहा अभी आबद गुरमानी साहब नासिर भाई का और रमजान कैसे मशहूरी साहब का भी फोन आया, तो वो भी आपको सलाम।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, तो जो आपने अभी सॉन्ग चलाया एक पुरानी याद ताज़ा की है आपने,
टीना सानी साहिबा का
ले जा और कमाल की मौसीकी, ऐसी असल में आपके प्रोग्राम में जरूरत है ऐसी मौसीकी को चलाया जाए जो नायाब हो चुकी है,
तो
और बिल्कुल शार्ट से टाइम में होनी चाहिए। और बाकी आप करता चलूँ कि कुछ फ्रिक्वेंसी जो है ना 972 ये आप ढूंढना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो ये नशियात में भी शोभा इंजीनियर को कहें कि वो जरा तवज्जो दें।
बहुत शुक्रिया,
जिस तरह पहले सुनाई देती थी आप उस तरह नहीं सुनाई दे रही।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं हबीब हुसैन शाह साहब से जिन्होंने रावला कोट से हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है, खैरियत है?
अल्लाह का शुक्र है जी।
बहुत अच्छे के बाद बात हुई है, बहुत तरस गए बात करने को।
बिल्कुल आप कीजिए जनाब।
मेरी तरफ से तमाम लोगों को आदाब, वॉइस ऑफ अमेरिका के जितने भी प्रोग्राम है और एक शिकायत के पहले सारे प्रोग्रामों में हमें वो कॉल हमारी लेते थे, लेकिन बहुत अरसे के बाद रात को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शायद शहनाज अजीज ने कोई 2-3 कॉलें ली है, तो अब हमारा रास्ता फिर आपसे ही रह गया। आप यूं ही समझे कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे छा गए हैं और हमारा प्रोग्राम ज्यादा आपसे ही होता है।
नहीं, मैंने आप सब लोगों की जो फरमाइश थी ना वो पहुंचाई है और अब सबको कहा है कि वो कोशिश करें कि जरूर कॉलर्स जो हैं उनको मौका दें, तो आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा बाकी प्रोग्राम्स में भी हम मौका दिया करेंगे। ठीक है
जी, इसीलिए आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
और आपका प्रोग्राम क्योंकि आप सबसे मैं समझता हूँ पसंदीदा रह गया है, जैसे वो मैं कहता हूँ कि बियाबा में समझे कि ख्याबा है आपका प्रोग्राम।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
तो दूसरा एक बेहतरीन गाना है पुराना लता जी का कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है।
जी जी,
संग संग तेरा नहीं साथ दुनिया चले भी तो क्या है, ये बहुत खूबसूरत गाना है, ये सुना दे अगले प्रोग्राम में।
बिल्कुल सुना देंगे। थैंक यू।
उमा देवी का एक ही गाना है, उमा देवी का अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, तो वो सुनाते। तो बाकी आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी आवाज हमेशा ऐसी सदा बहार रहे, आपका प्रोग्राम इसी तरह चलते रहे और हमारे जितने भी सामेईन आपके हैं जितने कार्य मेरी तरफ से, अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी और सेहत अता फरमाए।
बहुत शुक्रिया।
और दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में हर तरफ अमन ही अमन हो, कोई लड़ाई झगड़े ये बर्बादी ना, और इन बर्बादियों में बस आपका प्रोग्राम सुन के दिल खुश हो जाता है कि कुछ ना कुछ चल रही है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया हबीब हुसैन शाह साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब चलते हैं भक्कर जहाँ से फारूक आवान ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी कहिए फारूक साहब।
आप और सबको फरमाए और असगर इमाम साहब को मेरा सलाम कर दें, ये मेरे पुराने जानने वाले हैं।
जी जनाब, उन्होंने सुन लिया। जी जी बिल्कुल, आपका सलाम पहुंच गया।
दूसरी बात ये है कि मेरा एक पुराना गाना कभी मैं जवानी में सुना करता था, तो उसकी लिए अर्ज कर रहा हूँ। ये सुरैया मुल्तानी करकी है जुबान में।
जी जी।
और इश्क पर जोर नहीं फिल्म है उसका गाना है, बड़े बेमरवत है ये हुस्न वाले,
ठीक है
कहीं दिल लगाने की कोशिश न करनी।
बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। और मोहसिन अली से बात करते हैं जिन्होंने लैया से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सदिया ठीक हो?
जी बिल्कुल ठीक,
सदिया से ठीक है।
जी जी कहिए।
बहुत अच्छा है शो आपका।
थैंक यू।
बहुत मैं जो है ना मुसलसल सुनता रहता हूँ आपके शो, और बहुत अच्छा शो होता है।
थैंक यू
जी। और नेक्स्ट जो है ना शो में मुझे जो है ना एक मैं फिल्म ट्वेंटी का एक जो है ना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस शो में आपने मुझे कहा था कि कुछ गुन बना के दिखाएं, लेकिन वो तो वेरी आता था, और अब जो है ना नेक्स्ट शो में
तो आज क्यों नहीं
पोएट्री का एक,
आज क्यों नहीं
जी? नहीं बस चले नेक्स्ट जो
है। चलो ठीक है, फिर कॉल करना मत भूलिएगा मोहसिन, अब मैं याद रखूंगी आपने गुनगुना के सुनाना है। ठीक है,
नहीं गुनगुना के नहीं, बस जो है ना पोएट्री आपको सुनाऊंगा।
अच्छा, मुझे लगता है आप भी मेरे जैसे ही सिंगर हैं, है ना? बस ठीक है, फिर पोइट्री सुना दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके। तनवीर अली साहब से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, आप कहिए।
जी मैं आपका पुराना सामने सफीर अहमद मलिक जनरेटर से बात कर रहा हूँ।
ओहो, सफीर अहमद मलिक साहब, कैसे हैं आप?
जी अल्लाह कर, मैं आपका पुराना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और महीने इस तरह जुड़े हैं जिसमें शहर के साथ मक्खी जोड़ चुकी है ना। जी
जी जी
ये हमारे सामीन की मेहरबानियाँ है और ये जिसमें शाह कृष्ण साहब है और ये इन्होंने इंटरनेशनल फोरम बनाया हुआ है और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर एम आजम पेशाब में दिल्ली, वो भी हमारा दोस्त है, प्रोग्राम सुनते हैं, आपको हमारे सलाम दुआ देते रहते हैं। जी
बहुत शुक्रिया।
हमारी एक ख्वाहिश है कि मैडम यस्मीन सलीम सर को भी कभी इस्लाम में मेहमान बने। वो किसी दौर में प्रोग्राम आईना करती थी इस्लामाबाद में, बड़ा हिट और सुपर हिट प्रोग्राम चलता था।
जी जी,
तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दारे को तरक्की दे और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम में मोहब्बत रहेगा और कभी आप साहब की आवाज का इंटरव्यू भी कभी हमें सुनवाए।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और चूंकि हम थोड़ा सा उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इतनी देर अपने कॉलर्स को होल्ड पे रखा और अपने मेहमान से गुफ्तगू की, तो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले रहे हैं। तो नज़ीर लोन साहब से बात करते हैं जिन्होंने सिंध से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब।
वाले सलाम जी, राजा नज़ीर लोन बात कर रहा हूँ।
जी जी कहिए,
कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आज का मेहमान भी आपने उसको बहुत पसंद किया मैंने,
बहुत शुक्रिया।
तो प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ, मुझे हफ्ते वाला प्रोग्राम मैं नहीं सुन सका क्योंकि मैं घूमने गया था थर।
अच्छा, तो कैसा था थर, हमें भी बताइए कुछ।
बिल्कुल बहुत मजा था थर में, इतना मजा था, इतनी मेहमान नवाजी, दोस्त ने बहुत खिदमत हाजिरी की और तकरीबन इंडिया की बारह तक गए थे।
अच्छा,
तो लाल का इलाका जो है, थर का इलाका, वो सारा कुछ मोटरसाइकिल पर सैर किया।
अच्छा,
हाँ, वो रेडियो के लिसनर थे, वो सारे दोस्त मिले, बहुत खुश हुए हम।
तो यूं कीजिए ना नज़ीर साहब, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप यूज करते हैं इंटरनेट?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो तस्वीरें तो बनाई होंगी, तो हमारे फेसबुक का जो चार्ट बस्टर्स का पेज है उस पर आप हमारे साथ तस्वीरें शेयर करें ना, हम भी देखें थर कैसा लगता है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
कोई सुना दे सिंधी गाना।
ठीक है, मैं जरूर सुना दूंगी कोई भी सिंधी गाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अगले गीत की तरफ, अबरारुल हक की आवाज में, आप सब लोगों की फरमाइश पर उनका ये मारूफ गीत।
जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी, बिलो तेरी टोर वेख के अज गड्डियां च गड्डियां वज्जियां, अज गड्डियां च गड्डियां वज्जियां नी, बिलो तेरी टोर वेख के जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी, बिलो तेरी टोर वेख के दिल दियां टलियां बजियां नी, बिलो तेरी टोर वेख के जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नी, बिलो तेरी टोर वेख के तेरे पे लंघदे 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 ये पे आगुआ
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। और अब कुछ आपके मैसेजेस शामिल करती हूँ। मोहम्मद अकरम तोलंबा खानीवाल से लिखते हैं कि सादिया बहन अस्सलाम वालेकुम, गुज़श्ता जुमे को मैं आपके शो में मैसेज करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो सका। मेरी तरफ से आपकी तमाम टीम को सलाम और आपके तमाम लिसनर से और तमाम कश्मीरी जो लिसनर्स हैं उनको भी मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया। और शुएब हसन निहालिका ने जोया रोडा थल खुशाब से लिखा है, कभी याद आए तो पूछना जरा अपनी खलवते शाम से, किसे इश्क था तेरी जात से, किसे प्यार था तेरे नाम से, जरा याद कर कि वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था। थैंक यू शुएब साहब। और अकील मागरे ने लिखा है कि आपका गुज़श्ता शो बहुत मालूमाती था, बहुत अच्छा लगा। और मैं सब लोग जो हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं यानी यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनके लिए उसमें काफ़ी मालूमात थी। थैंक यू सो मच अकील। और अब हमारी तरफ से भी हमारे तमाम लिसनर्स जो हमें मैसेज किया करते थे बाकायदगी से हम उनको बता दें कि हम मिस कर रहे हैं आपको, आप प्लीज़ हमें मैसेज करें जैसे ही आपके पास ये फैसिलिटी हो। तो हम इंतज़ार करेंगे, चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अल्लाह दिता लूनेवाला की आवाज़ में ये गीत आप सब सरायकी बेल्ट में जितने भी लोग हैं जिन्होंने फरमाइश कर रखी है कि सरायकी का कोई गीत सुनाएं उनके लिए ये गीत। वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। और इस वक्त हमें कॉल की है लया से आबिद गुरमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हाल है जनाब?
बिल्कुल ठीक। आपका गायबाना सलाम अल्लाह दिता शाकिर साहब हमेशा पहुंचाते रहते हैं, तो आज आप खुद मौजूद हैं, आज आप खुद बात कीजिए।
जी जी, थैंक यू सो मच बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। हम तमाम दोस्त इंटरनेशनल रेडियो फोरम के तहत आपका प्रोग्राम सुनते हैं और उससे लुत्फ अंदोज होते हैं बाजी माशाल्लाह। मैं जो आपके मेहमान आप मदू करते हैं उनको वेलकम कहता हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेहमान को थोड़ा सा टाइम दें तो फिर आपकी जरा नवाजी होगी।
पता था मुझे।
ज्यादा कॉलर को मौका दिया करें बाजी, आपकी मेहरबानी होगी।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, मैंने नोट कर लिया। और मुझे पहले भी इस बात का पता है कि आप लोग चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शामिल हों इस प्रोग्राम में, मैं समझ सकती हूँ। जी जी,
एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम।
एग्जैक्टली, नहीं मैं समझ सकती हूँ, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही हम अपने गेस्ट जो है उनको प्रोग्राम में शामिल करें। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच आबिद साहब। और जावेद कायम खानी से बात करते हैं जिन्होंने कोट गुलाम मोहम्मद मीरपुर खास से कॉल की है। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है,
बहुत शुक्रिया।
और प्रोग्राम बहुत ही मजा आ रहा है। मेरे साथ दोस्त भी बैठे हुए हैं, सदीक खासकली साहब है, पोस्ट मास्टर है, वो भी बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अली हसन खासकली साहब भी है। हमारे पास अभी बरसात का मौसम हो रहा है, थर में बरसात हो रही है।
जी
तो
जी,
भागी का अगर आप कोई कलाम आप सुना दें अभी, नहीं तो
अगले प्रोग्राम में खड़ी नीम के नीचे मैं आप सबको सुना दूंगी। ठीक है, हमने पहले फैसला कर लिया हुआ था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेहर खालिद महमूद से बात करते हैं जिन्होंने रहीम यार खान से कॉल की है। जी मेहर खालिद साहब,
अस्सलाम सिस्टर, मेरे साथ हसनैन खालिद, हुसनैन खालिद, आसमा खालिद, फातिमा खालिद। सिस्टर आपके पुराने, बहुत ही पुराने लिसनर हैं
जी।
वो हमारे रिटायर्ड टीचर हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो मेरी तहसील लियाकतपुर के चाके रहने वालों से बात करें सिस्टर।
जी करवाइए।
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है साध्य बाजी?
जी बिल्कुल ठीक, आप कहिए।
हाँ, मैं पुराना रेडियो सुनता हूँ, गीती हुसैन के जमाने का।
जी जी।
हाँ, आप जब छुट्टी पे गई थी ना, उससे पहले एक आदमी कॉल की थी और एक बंद का आता सराइकी का ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का, वो था मैं नवाबी एक मणि। वो आपको समझ नहीं आई थी, काफी दिनों तक ये मेरे जहन में था।
अच्छा,
तो नए उन्होंने कहा है नदी को।
ओ अच्छा, ठीक है,
नदी को यानी दरिया को। दरिया जो है वो एक सिमत नहीं बहता, कभी उस सिमत होता है, कभी उस सिमत होता है। जिस सिमत बहता है वहां से मिट्टी उखाड़ता है और दूसरी सिमत पे डालता है।
सही सही, समझ गए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा।
सिस्टर थोड़ी सी बात करना, ये देखिए रुकेती है कि ये दुख सुख जो होते हैं ये एक मरतबा हर किसी के नहीं आते, बस दुख भी आते हैं और उसके बाद सुख भी आता है, बल्कि ये मना बनता है।
थैंक यू, बहुत
सिस्टर। राजा सफदर साहब को सलाम, राजा सफदर साहब को सलाम। थैंक
यू। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।
I'm कितना प्यारा जाए ये बेताबी बढ़ती जाए ये बेताबी जितना करूं न डारा
हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा
ओ तेरा साथ है कितना प्यारा
जी हमारे कुछ बहुत ही रेगुलर लिसनर्स जो हैं जो बहुत बाकायदगी से मैसेज किया करते थे फेसबुक पर काफ़ी दिनों से मुझे उनका मैसेज नहीं मिला तो मैं याद करवा दूं अशोक ग्रोवर जी और प्रवीण ग्रोवर जी आप सब हमें भटिंडा से मैसेज करते थे और राजस्थान से एक सरदार साहब हमें मैसेज भी करते थे और एक दफ़ा उन्होंने हमें कॉल भी की थी और गुरमिंदर सिंह ग्रिवाल जो हैं लुधियाना से हमें मैसेज करते हैं तो हम आपको मिस कर रहे हैं आप हमें मैसेज कीजिए फेसबुक के हमारे पेज पर तो बहुत अच्छा लगेगा और अपनी फरमाइश के कुछ गीत बताइए क्योंकि आप बड़े अच्छे अच्छे आप लोगों की चॉइस बहुत अच्छी है और आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम आपको भूले नहीं हैं तो चलते हैं अगला गाना आप सब जिनके मैंने नाम लिए हैं उन सब के लिए ये गीत
उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम आ गए उठ गए जो कदम
जी अब जाने का वक्त आ गया है अगले जुमे तक के लिए सादिया ज़िब्रान झा और असफर इमाम को इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अगले जुमे को फिर मुलाकात होगी जाने से पहले ये खूबसूरत गीत आप सब लोगों के नाम
रहने की कसम खाई
سازوں نے جمعرات کے روز کانگریس کی ایک سماعت کے دوران طالبان کے ساتھ معطل امن مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کے آغاز میں مذاکرات کو معطل کر دیا تھا. کھلی سماعت کے بعد ایک بند اجلاس میں قانون سازوں نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیلزاد سے مزید معلومات کے لیے سوالات کے جواب چاہے. وائس آف امریکہ کے نمائندہ کیتھرین جپسن کی افغانستان میں امریکہ کے آئندہ رول کے بارے میں کیے گئے سوالوں کے بارے میں رپورٹ پیش ہے. طالبان کے حملوں کی ایک نئی لہر. صدر ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات کے خاتمے کے اعلان کے بعد 18 سالہ طویل جنگ کے بعد دونوں فریقوں کو تعطل کا سامنا ہے. ریپبلکن قانون ساز مائیکل میکال کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کیا متبادل ہے جبکہ وہ 50% افغانستان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں.
The Taliban are focused on securing the removal of U.S. and international forces from Afghanistan. They understand from 9 rounds of negotiations that that can only come about if they are committed to ensuring that Afghanistan
can be able to ensure that the Taliban can be able to ensure that the Taliban can be able to ensure that وہ مذاکرات کے 9 ادوار کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس بات کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہوں کہ افغانستان بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز نہیں بن سکتا. افغانستان میں مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیلزاد نے ان مذاکرات کی قیادت کی تھی جو کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ ٹرمپ ملاقات پر منتج ہو سکتے تھے, اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے دونوں پارٹیوں کے قانون سازوں کو خفا کیا.
happens again. No terrorist should be allowed on the United States unless they're in chains. And
Republican Adam Kinzinger کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا. کسی دہشت گرد کو اس وقت تک امریکہ کی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ تحویل میں نہ ہو, اور خاص طور پر وہ دہشت گرد جنہوں نے 9/11 حملے کیے.
The president himself has spoken openly about his thought process on the Camp David invitation. I would just underscore
امریکی محکمہ خارجہ سے ایلس جی ویلز کا کہنا ہے کہ صدر نے خود کھلم کھلا کیمپ ڈیوڈ کے دعوت نامے پر اپنی سوچ بچار کے بارے میں بات کی ہے, اور اسی کی طرف توجہ بھی دی جا سکتی ہے کہ اس سے پھر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی انتظامیہ ہے جو امن کو فروغ دینے کی کوشش میں کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہے. واشنگٹن ایک اور غیر متوقع قدم اٹھا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے افغانستان کی امداد میں $160 ملین کٹوتی کا اعلان کرتے ہوئے افغان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ناقابل بھروسہ حلیف ہے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرے, اور امریکی قانون ساز تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے کسی فوجی حل کا وقت ختم ہو چکا ہے.
ایوان
کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ ایلیٹ اینگل کا کہنا ہے کہ 18 سالہ جنگ کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ طالبان ابھی بھی موجود ہیں, اور بدقسمتی سے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ امن قائم نہیں کرتے. مانے یا نہ مانے, نقطۂ آغاز یہی ہے کہ طالبان افغانستان سے ہمارے فوجیوں کا انخلا چاہتے ہیں, اور ہم بھی اپنے فوجیوں کو واپس وطن لانے کے خواہاں ہیں. طالبان کے امن عمل کے لیے وعدوں کی ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ 28 ستمبر کو ہونے والے افغان صدارتی انتخابات سے پہلے تشدد کو ختم کیا جائے. ادھر افغانستان میں شدت پسندی کی بڑھتی ہوئی حالیہ لہر اور طالبان کی جانب سے حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول عمل قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے جمعرات کو جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان حالیہ چند ہفتوں میں افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کی سخت مذمت کرتے ہیں.
بالخصوص کابل کے دھماکوں اور چاری کار میں افغان صدر کی انتخابی ریلی پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان ان بزدلانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں جن کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ پرتشدد واقعات ہر صورت میں بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے دہشت گردی کو بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کارروائیوں کے مرتکب افراد، منتظمین، مالی سہولت کاروں اور کفیلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سلامتی کونسل نے تمام ملکوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت اس سلسلے میں افغان حکومت اور دیگر تمام متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔